पृष्ठ संख्या 38, शीर्षक है धर्म का अन्य विषयों से संबंध। इसके अंतर्गत शीर्षक है धर्म और विज्ञान। प्रोफेसर एडवर्ड ने धर्म और विज्ञान के संबंध में एक बड़ा समुचित प्रश्न उठाया है कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है और विज्ञान ने मानव जात की विभिन्न रूपों में सेवा की है और कर रहा है, फिर इस युग में धर्म की क्या आवश्यकता है? वह कौन सा कार्य है जिसे धर्म के अतिरिक्त विज्ञान नहीं कर सकता? आधुनिक युग में धर्म के प्रति लोगों की आलोचनात्मक दृष्टि विकसित हुई है। विज्ञान ने सचमुच जीवन और जगत के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है। हमारी अनेक मान्यताएं विज्ञान के कारण ध्वस्त हुई हैं। वर्तमान जगत की वास्तविकता वैज्ञानिक खोजों से ही उभरकर हमारे सामने प्रकट हुई है। इससे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि विज्ञान से ही सत्य की खोज हो सकती है। क्या सचमुच विज्ञान से ही सत्य का पता लगाया जा सकता है? क्या विज्ञान धर्म का बिल्कुल विरोधी है, या कोई ऐसा बिंदु है जहां दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं? आदि प्रश्न विज्ञान और धर्म के विषय में उत्सुकता पूर्वक किए जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म और विज्ञान की आधार भूमि एक ही है। दोनों में मानव चेतना का ज्ञानात्मक पहलू क्रियाशील रहता है। दोनों सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पहलू पर जोर देते हैं और उन दोनों का लक्ष्य सत्य का पता लगाना है। मानवता की सेवा में दोनों ही लगे हुए हैं, परंतु धर्म और विज्ञान में फिर भी अंतर है। विरोध निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। अगला शीर्षक है पहला उद्देश्य। इसके अंतर्गत बिंदु अ है, शीर्षक है कार्य कारण एवं प्रयोजन। विज्ञान का उद्देश्य वस्तुओं और मानव अनुभूतियों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करके उसकी व्याख्या करना है। पृष्ठ संख्या 39। विज्ञान कारण के नियम के अभाव में किसी भी घटना को स्वीकार नहीं करता, परंतु कार्य कारण का नियम क्यों काम करता है, इस प्रश्न का विज्ञान उत्तर नहीं देता। इसके लिए प्रयोजनात्मक आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। धर्म का उद्देश्य प्रयोजनात्मक है। धर्म जीवन और जगत की प्रयोजनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। पैट्रिक के अनुसार घटनाओं के संबंध में इतना ही बताना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि ख कार्य है क का। इसके लिए यह भी बताना पड़ता है कि ख के कारण ही क का अस्तित्व है या ख के लिए क है। निश्चित है कि ऐसा कहना प्रयोजनवादी व्याख्या को मान लेना है। अगला शीर्षक है बिंदु ब, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। विज्ञान का उद्देश्य जगत की परिमाणात्मक व्याख्या करना है। वह विषयों का निरीक्षण परीक्षण एवं वर्गीकरण करके सामान्य नियम की स्थापना करता है। विज्ञान वस्तु की नाप जोख करता है और गणितीय सूत्रों या फार्मूला द्वारा विश्व की व्याख्या करता है। वह वस्तुओं का मूल्यांकन नहीं करता, परंतु धर्म स्वरूप निर्धारण के साथ ही साथ वस्तु का मूल्य निर्धारण भी करता है। इसीलिए विज्ञान परिमाणात्मक है और धर्म गुणात्मक। विज्ञान का संबंध तथ्यों से है, परंतु धर्म का आध्यात्मिक मूल्यों से है। विज्ञान की दृष्टि में मूल्यों की खोज महत्वपूर्ण नहीं है। अगला शीर्षक है, बिंदु स है, सत्य एवं मोक्ष। विज्ञान का उद्देश्य सत्य की उपलब्धि करना है, जबकि धर्म का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। विज्ञान सत्य की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक नियमों की खोज करता है, परंतु धर्म का संबंध प्राकृतिक जगत से परे परम सत्ता से है, और सत्ता की प्राप्ति के लिए धर्म भावात्मक उपायों यथा प्रेम, श्रद्धा, समर्पण आदि का उपयोग करता है। अतः विज्ञान नियमों से भौतिक सत्य तक पहुँचता है, जबकि धर्म भावनाओं से आध्यात्मिक सत्य, जिसे मोक्ष कहते हैं, तक पहुँचता है। अब दूसरा शीर्षक है, विधि। विज्ञान प्रयोगात्मक है। वैज्ञानिक विधि में व्यक्तिगत भाव एवं संवेग को स्थान नहीं है, जबकि धर्म की विधि वैयक्तिक है। इसमें भावनाओं और संवेगों की विशेष आवश्यकता होती है। धर्म में अंतः अनुभूति, अंतः चेतना का विशेष उपयोग किया जाता है। विज्ञान में आगमनात्मक विधि का उपयोग होता है, परंतु धर्म में निगमनात्मक विधि काम में आती है। अगला शीर्षक है, तीसरा, दृष्टिकोण। धर्म का दृष्टिकोण वैयक्तिक होता है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात धर्म में सत्य की व्याख्या व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों के आधार पर की जाती है। इसके विपरीत विज्ञान का दृष्टिकोण निर्वैयक्तिक होता है। इसमें व्यक्तिगत संवेगों और इच्छाओं को स्थान नहीं है। विज्ञान तथ्यों का अध्ययन शुद्ध निरपेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर करता है। इसके लिए छोटे जीव जंतु तथा मनुष्य का अध्ययन समान महत्व का है। योगी और अपराधी व्यक्ति की क्रियाएं एक समान मूल्यवान है। अगला शीर्षक है, चौथा, परिवर्तनशीलता एवं अस्थायित्व। विज्ञान में परिवर्तनशीलता होती है। विज्ञान का नियम आगे होने वाली खोजों और आविष्कारों से बदलते रहते हैं, परंतु धर्म सनातन होता है। धर्म के नियमों में अस्थायित्व होता है। धर्म में धार्मिक नेता उन्हीं नियमों की नवीन ढंग से व्याख्या करते हैं, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप चिर अस्थायी रहता है। अगला शीर्षक है, बिंदु पांचवा है, क्षेत्र। विज्ञान का क्षेत्र बाह्य जगत है। वह बाह्य तथ्यों का ही निरीक्षण तथा परीक्षण करता है, परंतु धर्म का क्षेत्र व्यापक है। वह बाह्य तथा आंतरिक जगत दोनों का अध्ययन करता है। पृष्ठ संख्या 40। वह सर्वत्र एक ही व्यापक सार्वभौम नियम का अवलोकन करता है। धर्म का क्षेत्र बाह्य एवं आंतरिक जगत में निहित मूल्य और अर्थ से संबंधित है। इसमें विज्ञान की पहुँच नहीं है। इसके विपरीत तथ्यों के आकलन और विश्लेषण में धर्म की गति नहीं है। अगला शीर्षक है 6वां, आप्त वचन और स्वतंत्र चिंतन। धर्म में आप्त वचन महत्वपूर्ण है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को धर्म मानकर चलता है, परंतु विज्ञान में स्वतंत्र चिंतन का अधिक महत्व है। परीक्षण और प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया हुआ निष्कर्ष ही मान्य हो सकता है। किसी वैज्ञानिक की बात आंख बंद करके स्वीकार नहीं की जा सकती। अगला शीर्षक है 7वां, यंत्रवाद अध्यात्मवाद। विज्ञान जगत की यांत्रिक व्याख्या करके जीवन में नैतिकता को स्थान नहीं देता, परंतु धर्म जीवन की आध्यात्मिक व्याख्या करके नैतिकता को स्वीकार करता है। धर्म में नैतिकता अपेक्षित है। नैतिक जीवन के बिना आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है। अगला शीर्षक है 8वां है, बुद्धि हृदय। मस्तिष्क की उपज विज्ञान है, जिसने अपने विकास के द्वारा विश्व की भिन्नता में अभिन्नता लाने का प्रयास किया है। धर्म का संबंध हृदय पक्ष से है। वह रागात्मक संबंध को महत्व देता है, इसीलिए इसमें मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता है। धर्म में हृदय की प्रधानता का अर्थ यह नहीं है कि उसमें बौद्धिक पहलू नहीं है। विज्ञान हृदय विहीन कहा जाता है, परंतु धर्म बुद्धि शून्य नहीं। बुद्धि एवं विवेक धर्म की आधार भूमि है। अगला शीर्षक है 9वां, ईश्वर और विकासवाद। धर्म जगत की सृष्टि का आधार ईश्वर को मानता है। विज्ञान जगत की व्याख्या विकासवादी दृष्टिकोण से करता है। शक्ति और गति के सिद्धांत से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जगत उसी का परिणाम है। अगला शीर्षक है 10वां है, परीक्षण तथा विश्वास। वैज्ञानिक ज्ञान परीक्षण तथा प्रयोग पर आधारित है। तथ्यों को प्रयोग द्वारा सिद्ध करके ही स्वीकार किया जाता है, परंतु धर्म की मान्यताएं विश्वास पर निर्भर हैं। धर्म आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म आदि में विश्वास करके ही आगे बढ़ता है और जीवन तथा जगत की व्याख्या करता है। चूंकि विज्ञान धर्म की इन सब मान्यताओं को प्रयोगशाला में नियोजित रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें स्वीकार भी नहीं करता। परंतु सच बात तो यह है कि विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान परिकल्पनाओं तथा विश्वास पर ही आधारित है। धर्म जिस प्रकार ईश्वर तथा आत्मा की परिकल्पना करता है, वैसे ही विज्ञान अनेक स्वयं सिद्धियों तथा शक्तिगत के नियम, कार्य कारण तथा प्रकृति की एक रूपता आदि में विश्वास करता है। यह ठीक ही कहा गया है कि सभी ज्ञान परिकल्पनाओं के आधार पर बने हैं। यदि हम उन परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों को चुनौती दें तो संसार का कोई भी वैज्ञानिक उनको नहीं सिद्ध कर सकता। यदि हम इन पर अड़ जाएं कि उन स्वयं शुद्धियों को जो कि वास्तव में सिद्धियां नहीं हैं बल्कि परिकल्पनाएं हैं को सिद्ध किए बिना हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते तो हमारा विज्ञान का ज्ञान शून्य के बराबर होगा। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी यदि हम ईश्वर की परिकल्पना को न माने और इसे बुद्धि तथा तर्क द्वारा सिद्ध करने पर ही आग्रह करते रह जाएं तो हमें उनका कोई ज्ञान नहीं होगा। अतः विज्ञान की परिकल्पनाओं की तरह ही हमें धर्म में भी कुछ परिकल्पनाओं को मानकर ही आगे बढ़ना होगा। अगला शीर्षक है, क्या विज्ञान और धर्म में वास्तविक विरोध है? वास्तव में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इनमें विरोध तभी परिलक्षित होता है जब एक दूसरे के क्षेत्र में जाने का प्रयास करता है। इनका विरोध तभी होता है जब विज्ञान अपना क्षेत्र त्याग कर जगत की वास्तविकता की व्याख्या तथ्यात्मक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में करने लगता है और धर्म जगत की सत्ता की व्याख्या भौतिकवादी अथवा प्रकृतिवादी दर्शन के रूप में करने लगता है। पृष्ठ संख्या 41। कुछ दिनों पहले विज्ञान की यह प्रवृत्ति थी कि वह धर्म के उद्देश्यों पर आपेक्ष करता था और ईश्वर के अस्तित्व को असिद्ध करने का प्रयास करता था, परंतु आज यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह ईश्वर के अस्तित्व और धर्म पर आक्षेप करे। विश्व की बहुत सी चीज़ों की व्याख्या विज्ञान नहीं कर सकता, जैसे आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म इत्यादि। यही नहीं, विज्ञान उदगल या मैटर से जीवनी शक्ति प्रोटोप्लाज्म का विकास सिद्ध करने में असफल रहा है। विज्ञान यह सिद्ध नहीं कर सकता कि चैतन्य और विचार उदगल के सूक्ष्म रूप हैं। विश्व के अंतिम कारण के रूप में शक्ति और गति का सिद्धांत नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान उन वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं जो बुद्धि द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। यह केवल परिकल्पना मात्र है, इसे बुद्धि या प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। एडवर्ड द्वारा यह प्रश्न कि विज्ञान से क्या बचा है जिसको धर्म को करना है, या कौन सा कार्य है जिसे धर्म के अतिरिक्त विज्ञान नहीं कर सकता, वह यही कार्य है। विश्व की अंतिम सत्ता की व्याख्या जिसे विज्ञान बुद्धि द्वारा सिद्ध करने में अक्षम है, उसे धर्म करता है। धर्म का बहुत बड़ा कार्य विज्ञान को सशक्त करना है। धर्म अपना क्षेत्र छोड़कर वास्तविकता की तथ्यात्मक व्याख्या नहीं कर सकता, यह उसकी सीमा के बाहर है। आज का धर्म वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर अवस्थित है, उसमें रूढ़िवादिता और अंधविश्वास नहीं है। विज्ञान ने धर्म को विचार सम्मत बनाया है। ऐसी दशा में धार्मिक विज्ञान और वैज्ञानिक धर्म की स्थापना अनिवार्य है। इस आधार पर विज्ञान और धर्म में कोई विरोधी नहीं है। वस्तुतः यह कहना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शीर्षक है, क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं? जब विज्ञान और धर्म में वास्तविक रूप में कोई विरोध नहीं है तो अवश्य ही दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शीर्षक है, पहला अंश अंशी का संबंध। धर्म जगत की व्याख्या व्यापक नियम के आधार पर करता है। संपूर्ण के रूप में वास्तविक सत्ता को सिद्ध करता है। विज्ञान जगत की आंशिक सत्यता प्रकट करता है। अंशों के सत्य से ही अंशी का ज्ञान संभव कहा जा सकता है। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शीर्षक है, बिंदु दूसरा है, कार्य कारण प्रयोजन। विज्ञान जगत की कारण कार्य के नियम से व्याख्या करके जहां समाप्त हो जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता, या कारण कार्य का नियम क्यों काम करता है इसका उत्तर नहीं देता, वहां धर्म जगत की प्रयोजनीयता सिद्ध करके विज्ञान के कार्य की पूर्ति करता है। इस अर्थ में भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शीर्षक है, तीसरा तर्क एवं विश्वास। अनुभवों को तार्किक आधार पर मान्यता मिलनी चाहिए। यह कार्य विज्ञान करता है, परंतु विश्वास के बिना तर्क निराश्रित होते हैं। धर्म तर्क को आस्था तथा विश्वास से पुष्ट करता है। विश्वास रहित तर्क और विज्ञान की परिकल्पनाएं क्रियाशील नहीं हो सकती। अतः दोनों इस अर्थ में भी एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शीर्षक है, चौथा विधि की दृष्टि से पूरक हैं। विज्ञान चिंतनात्मक है और धर्म अनुभव तथा अंतर्ज्ञान पर आधारित है। विज्ञान तथ्यात्मक अध्ययन से धर्म के अनुभवों को पुष्ट करता है, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को समाप्त करता है, और धर्म विज्ञान को मानवीय मूल्यों का ज्ञान कराता है। पृष्ठ संख्या 42। जिन अनुभवों तक विज्ञान की पहुंच नहीं है, धर्म उनका अध्ययन करके ज्ञान सुलभ कराता है। विज्ञान जीवन में स्वतंत्र चिंतन परिष्कृत विचार उत्पन्न करता है, और धर्म जीवन में शुद्धता प्रेम और त्याग की भावना उत्पन्न करता है। अतः दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए आइंस्टीन ने कहा है कि विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है और धर्म विज्ञान के बिना अंधा है। गैलवे के शब्दों में विधि तथा प्रकृति की दृष्टि से न तो विज्ञान धर्म का विरोधी है और न तो धर्म विज्ञान का विरोधी है। यह विरोध क्षणिक रूप में तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अंत में यह कथन ही सत्य प्रतीत होता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि विज्ञान और धर्म में कोई वास्तविक विरोध है, उसे या तो विज्ञान का बहुत कम ज्ञान है या वह धर्म से बहुत अनजान है। अगला शीर्षक है धर्म एवं दर्शन। इसके अंतर्गत शीर्षक है भिन्नता। दर्शन और विज्ञान प्रमुख रूप से स्वतंत्र चिंतन और तार्किकता पर आधारित हैं। इस दृष्टि से दर्शन विज्ञान के निकट है और धर्म से उसका भेद अस्पष्ट है। दर्शन और धर्म उद्देश्य, दृष्टिकोण, विधि तथा क्रिया की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। अगला शीर्षक है पहला उद्देश्य। दर्शन का उद्देश्य विज्ञान की भांति ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से दर्शन विचार प्रधान है और धर्म व्यवहार प्रधान। यद्यपि दर्शन आध्यात्मिक मूल्यों का विवेचन अवश्य करता है, परंतु उसकी प्राप्ति के प्रति सचेष्ट नहीं रहता, जबकि धर्म उन मूल्यों को जीवन में उतारने की चेष्टा करता है। दर्शन का उद्देश्य सिद्धांतों की पुष्टि करना है, परंतु धर्म उन सिद्धांतों को जीवन में उतार कर सुख और शांति की स्थापना करता है। अगला शीर्षक है बिंदु दूसरा दृष्टिकोण। दर्शन का दृष्टिकोण ज्ञानात्मक और बौद्धिक है, जबकि धर्म का दृष्टिकोण भावात्मक है। दर्शन जीवन और जगत की बौद्धिक व्याख्या करता है। दर्शन संदेह से प्रारंभ करके तार्किक ढंग से पक्षपात रहित निर्णय पर पहुंचता है। धर्म में भावों की प्रधानता होती है। इसमें तर्क को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना श्रद्धा, भक्ति, आशा, निराशा एवं भय आदि भावों को प्रधानता दी जाती है। अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा है विधि। दर्शन में तार्किक विधि का उपयोग किया जाता है। दर्शन विचारात्मक है, इसके विपरीत धर्म भावात्मक है। इसमें अंतर्ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और धर्म ग्रंथ पर आश्रित होना पड़ता है। दर्शन केवल हमारी बौद्धिकता की तृप्ति करता है, जबकि धर्म मानव जीवन और चेतना के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलू की तृप्ति करता है। अगला शीर्षक है बिंदु चौथा है क्रिया। दर्शन की क्रिया विचार तक सीमित है। इसमें आलोचना, विवेचन और विश्लेषण की क्रिया होती है, परंतु धर्म की क्रियाएं ईश्वर चिंतन, प्रार्थना, पूजा पाठ एवं स्तुति आदि में देखी जाती है। अगला शीर्षक है समानता। उपर्युक्त विभिन्नताओं के होते हुए भी धर्म एवं दर्शन में अनेक समानताएं दृष्टिगत होती हैं। पहला है दोनों का लक्ष्य विश्व की व्याख्या करना है, एक सैद्धांतिक रूप से तथा दूसरा आध्यात्मिक मूल्यों की खोज करके विश्व की व्याख्या करता है। दूसरा है दोनों मनुष्य और जगत को पारमार्थिक महत्व प्रदान करते हैं। भौतिक मूल्यों को दोनों ही सर्वोपरि नहीं मानते। पृष्ठ संख्या 43। बिंदु तीसरा है ईश्वर या परम सत्ता दोनों का केंद्र बिंदु है। इन समानताओं से यही स्पष्ट होता है कि दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। इनमें वस्तुतः स्वाभाविक संबंध है। इस संबंध को हम दो रूपों में प्रकट कर सकते हैं। अगला शीर्षक है धर्म तथा दर्शन का स्वाभाविक संबंध। इसमें पहला शीर्षक है दर्शन धर्म का सैद्धांतिक आधार है। विश्व के सभी धर्मों की एक दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है। ईश्वर जीव जगत कर्म तथा पुनर्जन्म संबंधी विषयों के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। धर्म का इन सिद्धांतों में विश्वास रहता है। धर्म अनुभूतियों में भी इन विषयों से संबंधित विचारों को पुष्ट करता है, परंतु इनका सैद्धांतिक निरूपण दर्शन ही करता है। दर्शन इस सिद्धांतों की मीमांसा करके धर्म का आधार पुष्ट करता है। दर्शन जिस प्रकार विज्ञान की आलोचना करता है, उसी प्रकार धर्म की भी आलोचना करता है। निष्पक्ष आलोचना के अभाव में धर्म अंधविश्वास और रूढ़िवाद के घेरे में आ सकता है। जब भी दर्शन धर्म से प्रभावित हो जाता है और निष्पक्ष रूप से धर्म की आलोचना नहीं करता, तो दोनों का पतन स्वाभाविक हो जाता है। दर्शन जब धर्म की आलोचना नहीं करता है, तो धार्मिक व्यक्ति आशंका कर सकते हैं कि धर्म की मान्यताएं अवश्य नष्ट हो जाएंगी। परंतु बेकन के शब्दों में ऐसी शंका निराधार है। बेकन के अनुसार दर्शन का थोड़ा ज्ञान मनुष्य को नास्तिक बना सकता है, परंतु दर्शन की गहराई में जाने पर मनुष्य बिना धार्मिक बने नहीं रह सकता। अतः इससे सिद्ध है कि सैद्धांतिक दृष्टि से धर्म और दर्शन का स्वाभाविक संबंध है। अगला शीर्षक है, बिंदु दूसरा है, धर्म दर्शन का व्यवहारिक रूप है। सैद्धांतिक दृष्टि से दर्शन धर्म का आधार अवश्य है, परंतु कोई भी सिद्धांत निर्मूल्य है जब तक कि वह व्यवहार में न आ सके। धर्म दर्शन द्वारा स्थापित सिद्धांतों को व्यवहारित करके उसे अर्थ तथा मूल्य प्रदान करता है। बाम में ठीक ही कहा जाता है कि यदि दर्शन विचार है और धर्म क्रिया, तो व्यक्ति का धर्म उसके दर्शन का क्रियात्मक रूप है। दर्शन और धर्म का स्वाभाविक संबंध वैसा ही है जैसा मनुष्य के विचार और कर्म के संबंध में स्वाभाविकता है। इसी स्वाभाविक संबंध का परिणाम है कि भारतीय दर्शन कभी धर्म से अलग नहीं रहा है। अतः इस सहज संबंध के कारण ही सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक ही सत्य का ज्ञान दर्शन बुद्धि से प्राप्त करता है और धर्म अनुभूति से। अगला शीर्षक है, धर्म एवं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का धर्म से निकटतम संबंध माना जाता है। सामान्य रूप से यही स्वीकार किया जाता है कि नैतिक व्यक्ति अवश्य ही धार्मिक होता है और धार्मिक व्यक्ति निश्चय ही नैतिक दृष्टि से भला होगा। इन दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है। यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो देखने में आता है कि धर्म और नैतिकता का अभियोज्य संबंध है। प्रारंभ में नैतिकता और धर्म को अलग नहीं समझा जाता था। आदिम धर्म में मनुष्य का जीवन सरल था। सामाजिक जीवन अविकसित होने से धर्म और नैतिकता का अलगाव नहीं हो सकता था। बाद में दोनों में अंतर देखा जाने लगा। फिर भी दोनों का संबंध घनिष्ठ रूप में ही था। इन दोनों विषयों का संबंध निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 44। अगला शीर्षक है, पहला, नैतिक सिद्धांत धर्म के ही सिद्धांत हैं। नीति शास्त्र में ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता और इच्छा स्वातंत्र मान्य सिद्धांत है। धर्म इन मान्यताओं पर ही आधारित है। नीति शास्त्र यह मानता है कि नैतिक आदर्श ईश्वर में निहित सत्य के रूप में है। ईश्वर सर्वोच्च मूल्य है। इसकी प्राप्ति ही नीति का लक्ष्य है। इस प्रकार नीति शास्त्र और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। अगला शीर्षक है, दूसरा, आत्मा की अमरता। नीति शास्त्र धर्म की ही तरह आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। वर्तमान सीमित जीवन में चूंकि नैतिक आदर्शों की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए असीम जीवन की आवश्यकता है। नैतिक जीवन ही असीम जीवन या आत्मा की अमरता को सिद्ध करता है। साथ ही आत्मा की अमरता से नैतिक आदर्शों की पूर्ति का भी आश्वासन मिलता है। धर्म में आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व, यही दो मौलिक विषय हैं। अतः नीति शास्त्र और धर्म में घनिष्ठ संबंध है। अगला शीर्षक है, बिंदु तीसरा है, धर्म नीति का पूर्वगामी है। कुछ लोग धर्म को नीति का पूर्वगामी बतलाकर धर्म तथा नीति का संबंध स्थापित करते हैं। डेकार्त, लॉक तथा बर्कले आदि विचारकों का मत है कि धर्म नीति का जड़ है। नीति का उद्भव व उत्थान धर्म से होता है। ईश्वर द्वारा नियत कर्म सत है। ईश्वर द्वारा निषिद्ध कर्म असत कहा जाता है। ईश्वरीय नियम ही नैतिकता के मानदंड स्वरूप हैं। अगला शीर्षक है, चौथा, नीति धर्म का पूर्वगामी है। कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो नीति को धर्म का पूर्वगामी बतलाकर दोनों का संबंध निर्धारित करते हैं। इस मत के समर्थक कांट तथा मार्टिन्यो आदि हैं। कांट का विचार है कि नीति ही हमें धर्म में ले जाती है। मार्टिन्यो भी नैतिक बाध्यता के आधार पर सिद्ध करते हैं कि मनुष्य समाज या राज्य नैतिक बाध्यता उत्पन्न नहीं करते। वह ईश्वर ही है जो नैतिक बाध्यता का कारण है। अतः नीति धर्म से परिपूर्ण है। हाफडिंग भी धर्म का आधार नैतिक मूल्यों को मानते हैं। सारांश यह है कि नैतिकता को धर्म का आवश्यक अंग कहा जा सकता है। नैतिकता और धर्म एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला शीर्षक है, नीति शास्त्र तथा धर्म में अंतर। नीति तथा धर्म में निकट संबंध होते हुए भी अनेक अर्थों में भेद देखा जा सकता है। अगला शीर्षक है, पहला, धर्म के अभाव में भी नैतिकता संभव है। कुछ नीति शास्त्रज्ञों के अनुसार धर्म और नीति आवश्यक रूप में संबंधित नहीं है। नीति धर्म पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर है। नीति में धार्मिकता का बोझ अनावश्यक है। कम्टे, मील तथा स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति बिना धार्मिक हुए भी चरित्रवान हो सकता है। अब दूसरा शीर्षक है, धर्म नैतिकता से अधिक व्यापक है। यद्यपि दोनों का लक्ष्य शुभ की प्राप्ति है, परंतु जहाँ नैतिकता का लक्ष्य केवल शुभ है, वहाँ धर्म का लक्ष्य सत्य, शुभ एवं सुंदर की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त नैतिकता का शुभ अप्राप्य है। नैतिकता का आधार आदर्श है और आदर्श पर चला जाता है, न कि वह प्राप्य है। इसके विपरीत धर्म का शुभ वास्तविक आदर्श है, वह वर्तमान जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला शीर्षक है, तीसरा, नैतिकता तथा धार्मिकता का क्षेत्र। नैतिकता का क्षेत्र प्रयत्न तथा द्वंद्व का क्षेत्र है। नैतिक व्यक्ति वासनापूर्ण जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन के बीच प्रयत्न, संघर्ष तथा द्वंद्व करता है। उसे अपनी असीमता का बोध होता है। असीम के क्षेत्र में जाने के लिए, नैतिक आदर्शों के पालन के लिए उसे सतत संघर्ष एवं युद्ध करना पड़ता है। परंतु धर्म का क्षेत्र शांति एवं विजय का क्षेत्र है। पूर्ण आध्यात्मिकता में संघर्षों और अभावों का नाम नहीं होता। वहाँ पूर्ण संतोष, आनंद एवं शांति रहती है। पृष्ठ संख्या 45। अगला शीर्षक है, चौथा, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में नैतिकता अपूर्ण साधन है। मनुष्य के अंदर वासना और बुद्धि का द्वंद्व होता है। इस द्वंद्व को मिटाने का नाम ही नैतिकता है। नैतिकता से मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी बन जाता है, परंतु नैतिकता सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण साधन के रूप में नहीं है। नैतिकता से इतना ही होता है कि हमारे उच्चतम स्व का विकास होता है। सामाजिक नैतिकता से और भी आत्म विकास होता है। फिर भी केयर्ड के शब्दों में नैतिकता का उच्चतम फल केवल असीम के निकट है। नैतिक जीवन में हम मानव स्वभाव के प्राकृतिक और आध्यात्मिक यथार्थ और आदर्श, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक द्वंद्व का समन्वय पाते हैं। इसके द्वारा हम असीम को नहीं प्राप्त करते। अगला शीर्षक है, बिंदु 5, नैतिक जीवन बाधित होता है और आध्यात्मिक जीवन अबाधित। हम नैतिक जीवन में बंधकर चलते हैं। आध्यात्मिक जीवन तो वह है जो प्रज्ञा तथा आत्मचेतनता के असीम तत्व के साथ हो, वह अबाधित होता है। परंतु नैतिकता में हम एक दूसरे की इच्छा के साथ बंधकर चलते हैं। अगला शीर्षक है, नैतिकता और धर्म अन्योन्याश्रित हैं। उपर्युक्त विरोधों के होते हुए भी हमने देखा है कि कई अर्थों में नीति और धर्म में समानता है। कुछ विचारकों के मत में नीति और धर्म में केवल समानता ही नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे पर आवश्यक रूप से आश्रित हैं। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में नैतिकता धर्म के लिए आवश्यक है और धर्म नैतिकता के लिए। अगला शीर्षक है धर्म के लिए नैतिकता आवश्यक है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धार्मिक व्यक्ति का नैतिक आचरण आवश्यक है। धर्म में आचरण की पवित्रता आवश्यक मानी जाती है। नैतिकता हमारे आचरण को महत्व प्रदान करती है। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के पैगंबर और धार्मिक नेता नैतिक आचरण पर बल देते हैं। नैतिक गुणों को ईश्वरीय गुणों के तुल्य बताया गया है, अतः नैतिक गुणों का प्रकाशन धर्म में अनिवार्य है। इसलिए नैतिकता धर्म के लिए आवश्यक है। अगला शीर्षक है नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक है। नैतिकता अपने में पूर्ण नहीं कही जा सकती। हमने देखा है कि केयर्ड ने नैतिकता को सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में केवल अपूर्ण साधन माना है। उसकी पूर्णता अध्यात्म में समाहित होने पर ही संभव है। वासना और बुद्धि के संघर्ष का परिणाम नैतिकता होती है, जो अध्यात्म की ओर जाती है। ईश्वर विहीन नैतिकता धर्म का स्थान नहीं ले सकती, जैसा कि भाववादी या प्रत्यक्षवादी विचारक मानते हैं। वह धर्म ही है जो नैतिक प्रयत्न तथा संघर्ष को अर्थ प्रदान कर सकता है। धर्म नैतिकता का आधार है तथा नैतिकता धर्म का बाह्य प्रकाशन है। नीति व्यक्ति तथा समाज के संबंधों पर बल देती है और धर्म व्यक्ति तथा ईश्वर के संबंध पर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। नैतिकता धर्म को परिशुद्ध करती है और धर्म नीति को प्रेरणा देता है तथा उसका उत्थान करता है। अतः नैतिकता और धर्म अन्योन्याश्रित हैं। अगला शीर्षक है धर्म एवं कला। मानव जीवन की तीन आदर्श हैं सत्य, शुभ एवं सुंदर। कहा जा सकता है कि कला सुंदर की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। पृष्ठ संख्या 46। कला का कार्य सौंदर्य को मूर्त रूप प्रदान करना है। कला में सौंदर्य की अभिव्यक्ति ऐन्द्रिक साधनों यथा रंग, आकार और शब्द द्वारा होती है। मानव में निहित चित्त शक्ति ही रंगों द्वारा चित्रों में प्रकट की जाती है। मूर्तियों द्वारा आकार प्रदान किया जाता है और शब्दों के माध्यम से वही संगीत का रूप लेता है। हेगल ने इसीलिए कला को आध्यात्मिकता एवं ऐन्द्रिकता का विवाह कहा है। निश्चित है कि सौंदर्य एक आध्यात्मिक अनुभूति है। इंद्रिय जन्य सुख से सौंदर्यानुभूति नितांत भिन्न है। इंद्रिय जन्य सुख में दुख और आवेग रहता है, उकताहट और छटपटाहट रहती है, पर सौंदर्यानुभूति विशुद्ध आनंदमयी होती है। इसका शारीरिक वासनाओं और इच्छाओं से संबंध नहीं रहता। यह बौद्धिक चिंतन से भी भिन्न होता है। बौद्धिक चिंतन अमूर्त होता है, परंतु इसमें मूर्त पदार्थ होता है। यह नियमों से बाधित नहीं होता, परंतु सौंदर्यानुभूति स्वतंत्र होती है। इस आध्यात्मिक अनुभूति को ही कला व्यक्त करती है। अतः कला और धर्म में आवश्यक रूप से संबंध है। अगला शीर्षक है, पहला, धर्म कला से उत्पन्न होता है। हेगल का विचार है कि धर्म कला से उत्पन्न होता है। मूर्ति पूजा धर्म का अंग माना जाता है। चित्रों का धर्म में कम महत्व नहीं है। मूर्ति और चित्र धर्म और कला को जोड़ने की श्रृंखला है, परंतु हेगेल का यह विचार है कि धर्म कला से अपने को शीघ्र ही मुक्त भी कर लेता है। बहुत से धर्मों में मूर्ति पूजा का विरोध भी किया जाता है, परंतु सच तो यह है कि धर्म मूर्त आधार को अपने से विलग नहीं कर सकता। धर्म में ईश्वर और मनुष्य का संबंध आवश्यक है। धर्म ईश्वर का मानवीकरण करता है। अगला शीर्षक है, बिंदु दूसरा है, कला धर्म को प्रभावशाली बनाती है। कला से धर्म को प्रेरणा मिलती है। उपासना आदि धार्मिक क्रियाएं कला के माध्यम से ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। अगला शीर्षक है, बिंदु तीसरा, धर्म कला को परिमार्जित करता है। कहना यह चाहिए कि धर्म से कला का उत्थान हुआ है। यही नहीं, कला का जब भी नग्न रूप आता है तो धर्म उसका परिमार्जन करके उसको स्वस्थ रूप प्रदान करता है। धर्म के कारण ही विभिन्न देशों में स्थापत्य कला, संगीत, मूर्ति कला एवं नृत्य का विकास हुआ। अगला शीर्षक है, बिंदु चौथा, लक्ष्य में समानता। दोनों का लक्ष्य आनंद अनुभूति प्राप्त करना है। दोनों में ज्ञान की अपेक्षा, भाव और संकल्प वृत्ति का आधिक्य है। कला और धर्म दोनों विश्व की रहस्यमयता का उद्घाटन करते हैं। अगला शीर्षक है, बिंदु पांचवा, जीवन से संबंध। कला और धर्म का मानव जीवन से संबंध है। कला मानव जीवन और धर्म से सदैव संबंधित रही है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि कला कला के लिए है। कला का संबंध जीवन और धर्म से स्थापित करने पर कला विनष्ट हो जाती है। यह विचार तर्क संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि कला को जीवन से अलग कर दिया जाए तो कला किस वस्तु की अभिव्यक्ति और व्याख्या करेगी। इस संबंध में अरविंद की उक्ति समीचीन लगती है, कला कला के लिए निसंदेह, परंतु कला होनी चाहिए सौंदर्य की सर्वांग सुंदर प्रतिच्छवि और व्यंजना, साथ ही कला होनी चाहिए अंतर आत्मा के लिए, आत्मा के लिए और उस सब की अभिव्यक्ति के लिए जिसे अंतर आत्मा एवं आत्मा सौंदर्य के माध्यम से अधिकृत करना चाहती है। कला हमारे सौंदर्य लक्षी और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पुरुषार्थ का अंग है और होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 47, शीर्षक है, कला और धर्म में भिन्नता। कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कहा जा सकता है कि कला ऐन्द्रियता को अधिक महत्व देती है, जबकि धर्म आध्यात्मिकता को, कला केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है, परंतु धर्म सत्य शुभ एवं सौंदर्य तीनों को प्रकट करता है। यदि धर्म कला पर आश्रित हो जाए तो उसका सार तत्व समाप्त हो जाए, फिर धर्म सौंदर्य भोग मात्र बनकर रह जाएगा। कला मनुष्य को धर्म की ओर ले जा सकती है, परंतु कला धर्म का स्थान नहीं ले सकती। अगला शीर्षक है, क्या दोनों परस्पर निर्भर हैं? उपर्युक्त विरोधों के होते हुए भी विचारकों का यह मत है कि कला और धर्म एक दूसरे पर निर्भर हैं। सत्य शुभ एवं सुंदर दोनों हैं। सौंदर्य एक पूर्ण मूल्य है, यह ईश्वर का मौलिक गुण है। कला इसी सौंदर्य की व्याख्या करती है। इसी सौंदर्य के द्वारा ही हम अंतिम सत्ता से संबंध स्थापित करते हैं। धर्म को कला की आवश्यकता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि कला को धर्म की आवश्यकता है। धर्म द्वारा ही कला को प्रेरणा तथा सृजनशीलता प्राप्त होती है। कला का परिष्कृत रूप धर्म के कारण ही संभव है। गैलवे के शब्दों में धर्म और नैतिकता की भांति कला भी मानव प्रकृति में निहित आध्यात्मिक तत्व की ही उपज है। तीनों उद्देश्यपूर्ण आध्यात्मिक जीवन से ग्रसित हैं और साध्य की प्राप्ति में सहायक हैं। अगला शीर्षक है, धर्म एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव अनुभूतियों एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। मानव चेतना में निहित ज्ञान, भाव और संकल्प से संयुक्त मानव व्यक्तित्व ही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। धर्म एक अनुभूति तथा व्यवहार है, अतः मनोविज्ञान मानव की धर्म से संबंधित इन्हीं अनुभूतियों और व्यवहारों का अध्ययन करता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धर्म जीवन का वह पहलू है जो सीधे ही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय बन जाता है। धर्म चूंकि एक मानसिक क्रिया है, इसलिए इसका अध्ययन कोई अन्य विज्ञान नहीं कर सकता। अन्य विज्ञान केवल बाह्य वस्तुओं का ही अध्ययन कर सकता है। वह मनोविज्ञान ही है जिसके आधार पर धर्म जैसे जटिल मानसिक क्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। धर्म में ज्ञानात्मक पहलू विश्वास के रूप में प्रकट होता है। भावात्मक पहलू ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था तथा श्रद्धा के रूप में प्रकट होता है और क्रियात्मक पहलू पूजा पाठ और कर्म कांड के रूप में अभिव्यक्त होता है। मनोविज्ञान इन सभी पहलुओं का अपनी सीमा के अंतर्गत अध्ययन करता है। चूंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसीलिए वह धर्म का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करता है। धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, धार्मिक अनुभूतियों का क्या औचित्य है तथा पूजा पाठ और कर्मकांड आदि धार्मिक क्रियाओं में कौन कौन से मानसिक तत्व कार्य करते हैं, इन सभी प्रश्नों का हल मनोविज्ञान ढूंढता है। यद्यपि धर्म का मनोविज्ञान से गहन संबंध है, परंतु विज्ञान होने के कारण मनोविज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, जिससे वह धर्म की सच्ची व्याख्या नहीं कर पाता। रहस्यवादियों की ऐसी बहुत सी क्रियाएं और अनुभूतियां हैं जिनकी व्याख्या मनोविज्ञान बहुत प्रयास करने के पश्चात भी नहीं कर सकता। पृष्ठ संख्या 48। अतः धर्म का मनोविज्ञान से संबंध होते हुए भी मनोविज्ञान अपनी सीमाओं और अक्षमता के कारण धर्म से दूर भी है। फिर भी धर्म के अध्ययन के लिए किसी विज्ञान का होना आवश्यक है, अन्य कोई विज्ञान इसके लिए सक्षम नहीं है। मनोविज्ञान ने धर्म का विश्लेषण और विवेचन करके उसका रूप स्पष्ट किया है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं की भांति धर्म मनोविज्ञान भी धर्म की अध्ययन विधि के रूप में विकसित हुआ है। अगला शीर्षक है धर्म एवं मानव शास्त्र। मनोविज्ञान के अतिरिक्त मानव शास्त्र ने भी धर्म के अध्ययन में पर्याप्त रुचि दिखलाई है। मानव शास्त्र एक ओर जहां मानव समाज के अन्य क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, वहां दूसरी ओर धर्म की उत्पत्ति, विकास और धार्मिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। कहना न होगा कि मनोविज्ञान धर्म के आंतरिक पक्ष का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र धर्म के बाह्य पक्ष का। यदि यह कथन सत्य है कि मानव का सच्चा अध्ययन मानव स्वयं है, या मैक्स मूलर के शब्दों में धर्म का इतिहास मानव के विकास का इतिहास है, तो सिद्ध है कि धर्म का अध्ययन मानव शास्त्र की दृष्टि से अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। अगला शीर्षक है मानव शास्त्र और धर्म की उत्पत्ति। मानव शास्त्र धर्म की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। मनुष्य में ईश्वर तथा आत्मा संबंधी धारणा कब और कैसे उत्पन्न हुई, इसका पता मानव शास्त्र ही लगाता है। धर्म के ऐतिहासिक विकास और ठोस तथ्यों के अभाव में धर्म की प्रकृति, कार्य और प्रामाणिकता एवं वैधता निश्चित नहीं की जा सकती। मानव शास्त्र धर्म की इस अर्थ में बहुत बड़ी सेवा करता है। मानव शास्त्र धर्म के विषय में अनेक तथ्यों को एकत्रित करता है। इस विषय में मानव शास्त्र ने अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए जीववाद, पूर्वजीववाद तथा टोटमवाद आदि ऐसे सिद्धांत मानव शास्त्र ने ही प्रतिपादित किए हैं, जिनसे धर्म के प्रारंभिक रूप का पता चलता है। धर्म एवं धर्म दर्शन को मानव शास्त्र से बहुत बड़ी सहायता मिली है। अगला शीर्षक है मानव शास्त्र धर्म की पूर्ण व्याख्या नहीं है। यद्यपि मानव शास्त्र द्वारा धर्म की बहुत बड़ी सेवा हुई है, परंतु यह सच है कि इसके द्वारा धर्म की पूर्ण और सच्ची व्याख्या नहीं हो सकती। धर्म उतना ही नहीं है जितना आदिम रूप में देखा जाता है। धर्म प्रगतिशील है। धर्म के कुछ आंतरिक तत्व हैं जो विभिन्न परिवर्तनों और प्रगति के बीच भी बने रहते हैं। उन तत्वों की व्याख्या मानव शास्त्र से संभव नहीं है। मानव शास्त्र धर्म के बाह्य रूप के विकास का अध्ययन करता है। धर्म का तात्विक रूप तथाकथित विकास की परिधि में नहीं आता, वह तो सनातन और चीर नवीन है। दासगुप्त के शब्दों में धार्मिकता का विकास जैविक तथा सामाजिक विकास से नितांत भिन्न है। यद्यपि सामाजिक विकास कुछ सीमा तक व्यक्ति के धार्मिक बोध को प्रभावित कर सकता है, परंतु मनुष्य की धार्मिकता उसके सर्वोच्च जीवन जीने की क्षमता और उच्च संवेगों की ग्रहणशीलता पर निर्भर है। मनुष्य को सामाजिक विकास धार्मिक नहीं बनाता, बल्कि उसकी आध्यात्मिक भूख ही उसे धार्मिकता की ओर ले जाती है। फिर भी धर्म का मानव शास्त्रीय अध्ययन धर्म के लिए महत्वपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि धर्म के इतिहास को जानना भी धर्म के हित में आवश्यक ही है। अध्याय 2 समाप्त।